نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 280 سورة طارق سورة الأعلى اور سورة الغاشية. لسن نمبر 280 سورة طارق سورة الأعلى سورة الغاشية. سب سے پہلے ہم سورة طارق کریں گے. سورة طارق ترتیب کے اعتبار سے 86 یعنی 86 نمبر کی صورت ہے. اس میں 17 یعنی 17 آیات ہے, ایک رکوع ہے, 61 یعنی 61 کلمات ہیں اور 239 یعنی 239 حروف ہیں. سورۃ طارق مکی ہے اور اس میں انداز وہی ہے کہ کائنات پہ غور کرتے ہوئے انسان کی تخلیق پہ غور کروایا گیا, اور اس صورت کا بنیادی تھیم ہے بیداری, جاگ جاؤ سونے والو اٹھ جاؤ. اور اس میں انسان کو ایک ایسی چیز کی قسم کھا کر یقین دلایا گیا کہ واقعی ہر انسان جو ہے اس کے سر پہ کوئی نہ کوئی مسلط ہے کہ جس کو ہم کھلی آنکھ سے دیکھیں نہ دیکھیں لیکن عبرت کی نگاہوں سے بہرحال ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی صورت میں قرآن ایک دو ٹوک کلام ہے, آخر میں اس بات کا یقین دلا دیا گیا کہ جو بندہ بھی اس قرآن کو پڑھے گا اس کو بالکل یہ اپنی ہی بات لگے گی, اور جو دعوت کے راستے کی رکاوٹیں تھیں اس دور میں اس کا انداز بھی ہمیں اس میں ملے گا کہ کس طریقے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے, اور انسان کے دنیا میں سے جانے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونے, اور قرآن ایک قول فصل ہے اس کو بھی اس میں بنایا گیا. سب سے پہلے اگر سورت کے نام کو بات کریں تو طارق پہلی آیت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو گواہ بنایا گیا اس بات پر کہ یہ کائنات کسی سسٹم کے لیے بنی, کسی مقصد کے لیے بنی. انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پانی کی ایک بوند سے جب اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے تو ایک بنے ہوئے انسان کو دوبارہ انسان اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بنا سکتا. سورت کو دیکھتے ہیں, انداز وہی ہے کہ ہم ایک اسٹریچ میں سورت کو دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی. وما ادراک ما الطارق, اور آپ کو کیا معلوم کہ طارق یعنی رات کو آنے والا کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں وہ کیا ہے. النجم الثاقب, ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا. لفظ طارق ہمیں جو آیات میں دکھا, طارق کا لفظ توئے راقاب سے ہے. طارقہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کوٹنا, کھٹکھٹانا. رات کے وقت آنے والے مہمان کو طارق کہتے تھے عرب لوگ, کیونکہ وہ سوتے ہوئے میزبان کو جگانے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ستارے کو بھی طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو آتا ہے اور اس وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں یہ چمکنے لگتا ہے. پھر آگے لفظ ہے النجم الثاقب, نجم پہ بات پیچھے ہوئی, یہاں اسے مراد ستارہ ہے. حالانکہ سورت نجم میں اس کے متعلق ہم نے بات کی تھی کہ اسے مراد درخت اور بوٹیاں بھی ہوتی ہیں. سورت الرحمن میں بھی یہ لفظ گزرا, اور یہاں ثاقب کا لفظ اس کے آگے سا قاف با سے ہے. ثقبا کہتے ہیں سوراخ کو. اندھیرے میں روشنی کی کرن ایسے ہی دکھائی دیتی ہے کہ اس نے اندھیرے میں سوراخ کر کے ایک روشنی پیدا کر دی. تو وہ ستارہ جو بہت زیادہ چمکدار ہو اس کو طارق کہتے ہیں, تیز روشنی ہوتی ہے. اور ایک خاص ستارہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے جو کہ بہت چمکتا ہے. یہ وہ ستارہ ہوتا ہے کہ جو صبح کی امید لے کر آتا ہے. یہ لفظ عرب لوگ اپنی شاعری میں بھی بہت استعمال کرتے تھے. ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی ان کا ایک شعر بھی غزب احد میں جو انہوں نے پڑھا وہ کیا تھا کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق, کہ ہم ستارے کی بیٹیاں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نامور باپوں کی بیٹیاں ہیں, یعنی اپنے باپ کو وہ ستارہ کہہ رہی ہیں, اور نرم گداز قالینوں پر چلتی ہیں. اس وقت اسلام نہیں تھا نا, تو بس انہی چیزوں پہ فخر دکھتا ہے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب دل بدلا تو سب کچھ بدل گیا. یہ قسمیں کھا کر یقین کیا دلایا گیا, ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی محافظ نہ ہو, کہیں کوئی سیکیورٹی چیک نہ ہو, کوئی گارڈ مین نہ کھڑا ہو, کسی کو
مجبور کر کے نہ کہا جائے کہ آپ یہاں پیسے ڈال دیں، یہاں سے گزریے، یہاں ہے، کوئی ڈیوٹی پر موجود بندہ ہو نہ ہو، ہر بندے کے اوپر پھر بھی ایک محافظ ہے جو اس کو قانون شکنی سے روکتا ہے، جو اس کو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے روکتا ہے۔ آج کے دور میں یہ کام انسانوں سے زیادہ مشینوں سے لیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے نا، تو آج کی مشینوں کو دیکھیے۔ چند دن پہلے کا کسی کا قصہ کہ وہ کسی جگہ گئیں اور ٹائم تھا سٹور کی کلوزنگ کا، جو ایک خاص راستہ ہوتا ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں، ٹائم گزرا تو انہوں نے اب وہ بند کر دیا۔ دو خاتون تھیں، ان میں سے ایک جو تھی ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ ڈور بند ہو چکا ہوگا، وہ واپس جانے کے لیے اسی ڈور سے نکلی۔ جب وہ نکلی تو پیچھے سے انہوں نے بھی کہا کہ یہ ڈور تو بند ہو گیا ہوگا، تو جو سات خاتون نے کہا چلے دیکھتے ہیں بند ہوگا تو نہیں کھلے گا، انہوں نے جو ہی کلک کیا تو وہ ڈور کھل گیا، وہ چل پڑی، انہوں نے کہا آ جائیں کھلا، ابھی بند نہیں ہوا، جیسے ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم ہوگا کچھ۔ جو ہی وہ دوسرے ڈور کو کھولنے کے لیے گئی وہ بھی کھلا، لیکن اس کے کھلنے کی دیر تھی کہ سائرن بج گئے، سیکیورٹی جو گارڈ تھی وہ فوراً بھاگی آئی کہ آپ ادھر سے کیوں جا رہے ہیں، یہ ڈور تو بند کر دیا۔ تو ایک مشین ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ایک ڈور کھلے جو بند تھا، جس کو بھی نہیں کھلنا تھا، تو سیکیورٹی بجے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان حرام کا دروازہ کھولے اور پتہ نہ چلے؟ کیسے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ گناہ، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنا بڑا گناہ، میں تو اس کو کھیل سمجھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہر بندے پر ایک محافظ ہے۔ یہ حافظ یعنی محافظ کون ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ انسان کے نام اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں، پیچھے بھی بات ہو چکی اس پہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ۔ دوسرا اس کا مفہوم لیا گیا کہ نگہبان سے مراد اللہ کی ذات ہے، المہیمن اس کا نام ہے، زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، جس کے وجود سے ہر چیز وجود میں آئی، جس کے باقی رہنے سے ہر چیز باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر چیز اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات پوری کروانے اور اس کو ایک خاص مدت تک مشکلات سے، آفات سے، تکلیفوں سے بچانے کا خود ذمہ لے لیا، وہ ذات کہتی ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ کوئی نہ کوئی ذات ایسی موجود ہے جو رہتی ہے۔ اب یہ حافظ پھر دو قسم کے، اگر اس سے مراد اللہ کی ذات کے علاوہ فرشتوں کو لے، تو پہلی چیز تو ہم نے دیکھ لی کہ نام اعمال کی حفاظت کرنے والے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہ لکھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ان کے حساب اتنے غلط ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کیا لکھا تھا، کہاں لکھا تھا، اور بعد میں گٹ مٹ ہو جائے، چلو چھوڑ ہی دیتے ہیں، اب جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑ دیں، نہیں، ایک ایک لفظ لکھتے ہیں۔ لیکن تیسری تفسیر بیسیکلی اب یہ بنے گی، فرشتوں کی دوسری قسم کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرامن کاتبین نہیں بلکہ انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ ہر ایک انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 160 فرشتے مقرر کیے گئے، جو انسان کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں، ان میں سے 7 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان سے ہر قسم کی بلا اور مصیبت کو ٹالتے ہیں، اور جیسے شہد کے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے وغیرہ سے رفع کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ فرشتے شیطانوں سے انسان کو بچاتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو کتنے ہی شیطان ہیں جو ہمیں اچک کے لے جائیں۔ اللہ نے کیسے سیکیورٹی کے انتظام کیے ہوئے، اندر بھی باہر بھی، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یعنی انسان کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں اور کچھ دکھتی بھی نہیں، لیکن اللہ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گارڈ مین باہر بیٹھا ہے تو ہے، نہیں بیٹھا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں پتہ ہی نہیں کس طریقے سے میں نے حفاظت کروائی۔ اور یہ جو غیر متوقع حادثات اور اچانک مصیبتیں آتی ہیں، کبھی کوئی چوٹ لگ گئی اور آپ بچ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بال بال بچ گئے، کبھی دیکھیں بچے کو چوٹ لگے تو ماں ایک دم ہول دی، ہائے اس کی آنکھ گئی، خون نکل رہا ہے، پھر 98% یہ ہوتا ہے الحمدللہ آنکھ بچ گئی، اس کے نیچے تھوڑا سا لگا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ ہٹا دیتا ہے اس چوٹ کو، زخم کو، کہ نیچے جا کے لگے، हम गाड़ियों में जाते, हम स्कूटर्स पे जो लोग चलते जाते, कैसे मतलब ड्राइविंग में देखें कि सामने से क्या कुछ नहीं आ सकता, और जरासीम कितने फैले हुए हैं। मुझे बाजी की बात याद आ रही है कि जब भी उनकी ये तकलीफ शुरू हुई है तो दिखाती दिखाती ये देखें समझ नहीं आता, एक कोई बैक्टीरिया जिसम में चला गया, वो कभी कहीं आ जाता है कभी कहीं, यहाँ दर्द हो रहा है, सुर्ख होता है, फिर सूज जाता है, फिर उस ख़ारिश को दिल जाता है, फिर थोड़ी देर ठीक होता है, फिर बैठे बैठे कभी पाँव के अंगूठे पे चला जाता है, किसी दिन उठती हूँ तो कुछ, और उठी है एक दिन तो आँख में था, और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में बैठे हैं, अब क्या मसला है, सब तो ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं अभी है किधर है वो नहीं पता लग रहा, तो मैंने कहा छोड़े है ही नहीं, तभी नहीं मिल रहा ना, चलें घर चलते हैं, कहती नहीं है कुछ, कोई है चीज़, डॉक्टर कहते हैं नहीं वो किसी वक्त डर या कि दिल पे ना हमला कर दे, इसी अंदेशा में वो कई दिन से हॉस्पिटल में थी ना, तो आप देखिए कि एक बैक्टीरिया इतनी तरक्की साइंस की इसको बेबस कर देता है। इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, जितनी मर्जी अपनी सिक्योरिटीज करवा लें, दवाइयाँ खा लें, एंटीबायोटिक्स खा लें, अल्लाह की जात जो हिफाजत करती है वो कोई नहीं कर सकता। आप लफ्ज़ हाफिज के नीचे एंटीबायोटिक लिख सकते हैं, कहते हैं पिल्स खा ली थी, हाँ जी प्रिकॉशंस ले ली थी, फलां जगह गए इंजेक्शन लगवा लिया था पहले से हिफाजत का, आप कुछ भी कर लीजिए, असल बात यह है कि जो हिफाजत अल्लाह करवाता है वो कोई नहीं करा सकता। इस कायनात की हिफाजत करवाने वाला अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ज़रा सोचो तो सही, चलो तुमने आलम बाला पर गौर तो कर लिया, अब जरा अपने 5-6 फुट के जिस्म पे भी तो गौर करो। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, बस चाहिए कि इंसान देखे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया, अपनी असल पहचान है कोई देखने की चीज़ जो अल्लाह दिखा रहे हैं, गौर करने की तरफ इशारा है, खुली आँख से नहीं देखो बंद आँखों से देखो, दिल की आँख से देखो तुम पैदा किस चीज़ से किए गए, हो क्या तुम्हें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया के अंदर पैदा किया तो तुम बने किस चीज़ से। जब इंसान होश करता है तो उसको समझ आ जाती है कि उसकी असल क्या है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं देखो मिम्मा खुलिक, मिन और मा किस चीज़ से तुम पैदा किए गए, खुद ही फिर बता दिया खुली का मिम्मा इंदाफिक, इसे पैदा किया गया उछलते हुए पानी से, दाफिक का लफ्ज़ दफ़क़ा से, दाल फाका उछलता हुआ पानी, किसी चीज़ का उछल कर निकलना, उछलने वाला यहाँ मुराद है फाइल का वजन है, क्या है वो पानी उसकी असल क्या है, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो मर्द जन की पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है, बाज कहते हैं बाप की पुश से निकलता है और माँ के सीने से ये निकलता है पानी, क्या वो जात जिसने इस तरीके से इंसान की तख्लीक करवाई वो उसके दोबारा पैदा करने पे कादिर नहीं, यकीनन है क्योंकि इन्नहु अला रजईही लकादिर, बेशक वो इसको वापस लाने पर भी कादिर है। ये दो लफ्ज़ों की कहानी, इंसान जिस चीज़ से पैदा किया गया, जिस तरह पैदा किया गया, उसको आँख भी देखती है और कान भी सुनते हैं, क्या ये मुमकिन नहीं था कि इंसान सोने का बना होता, चांदी को पिघला के इंसान को ढाल दिया जाता, जैसे लोग बुत बनाते थे सोने चांदी के, इंसान का बुत भी सोने और चांदी के पानी का बना होता, फिर अल्लाह ताला उसमें रूह डालते, क्यों नहीं हुआ, फिर इंसान ने सजदा नहीं करना था, फिर पेशानी रख के आगे ना झुकती, मैं तो सोने का हूँ मेरी तो चमक खत्म हो जाएगी, मट्टी से बनाकर मट्टी में झुकाया कि आजिज़ी इख्तियार करो, नीचे जाओ दबो, अगर कुछ लेना चाहते हो तो आजिज़ बनना पड़ेगा, सोने का होता तो फिर मट्टी पे सजदा ना लगता, फिर सोने की कानों पे सजदे होते, फिर तो इंसान के दिल में न जाने दुनिया की कितनी मोहब्बत होती, इन्नहु अला रजही लकादिर, वो उसको दोबारा लाने पे कादिर है, गौर करो अपनी हस्ती पे गौर करो, शर्म से पानी पानी हो जाओगे, कौन है जिसने बाप के जिस्म से निकलने वाले पानी के लाखों करोड़ों जरसूमों में से एक जरसूमे को माँ के जिस्म से निकलने वाले अंडे से मिलाया, जब मर्द का स्पर्म निकलता है तो उसके अंदर अरब हा अरब छोटे छोटे खलिए होते हैं सेल्स, और उसमें से सिर्फ एक निकलता है, मौका मिला आपको तो किसी दिन पूरी इस पे एक वीडियो है कि कैसे लाखों में से सिर्फ एक मिलता है औरत के अंडे के साथ तो बच्चे की तखलीक होती है, और साइंस की बुक्स में जब पढ़ाते हैं ना तो कहते हैं कि एवरी सेल अवेट्स द एग, कि मर्द के जिस्म से जो पानी निकलता है उसका एक एक सेल की तलब, उसकी अर्ज होती है। जैसे हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं ना, हर सेल की तलब होती है कि उसको एग मिले और वो उसको मिलने को तैयार है। लेकिन क्यों नहीं होते बच्चे लोगों के? और जब होते हैं, जब अल्लाह चाहता है, इसलिए कि उसने हुक्म ही नहीं दिया। जब हुक्म देता है अल्लाह ताला ये काम करवा देता है, जब नहीं देता तो नहीं होता। कितना इंसान बेबस है, बनता कितना बड़ा। आपको पता है कि हिंदू धर्म में इंसानों को दो किस्मों में बांटा गया, वैसे तो हजारों हैं लेकिन दो बड़ी, ब्राह्मण और शूद्र। ब्राह्मण के बारे में उनका ख्याल है कि ये भगवान के सर से पैदा हुआ, ये लोग इसलिए याल हैं, और शूद्र के लिए कहते हैं कि ये भगवान के पांव से पैदा हुए हैं। असल में देखें तो इंसान को इन दोनों से भी ज़्यादा हकीर जगह से इंसान पैदा कराता। मुमकिन था कि औरत के सर के ऊपर बच्चा उग जाता? बिल्कुल था, बाजू मोटी हो जाती फिर उसमें से बच्चा निकल आता, मुमकिन था, बिल्कुल मुमकिन था। आंखों के रास्ते बच्चे आ जाते, कानों के आते हैं। इंसान गौर करे तू है क्या, इतनी गंदी नापाक जगह के हाथ लग जाए तो वजू टूट जाए, तुझे वहाँ से अल्लाह ने छू कर इस दुनिया में भेजा, फिर तो बड़ा बनता। ये बंदगी है, ये आजी सिखाई जा रही है। पेट में माँ के बच्चा यूं होता है झुका हुआ, बिल्कुल ये वही कैफियत है कि अगर उस बच्चे को ज़मीन पर रख दें तो वो सजदे पे चला जाए। आज दुनिया में आती अकड़ने लगता है, कहा गौर करो तुम हो क्या, तुम्हारी अकड़ कैसी है? जब तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो तो उस वक्त सोचा करो तुम हो क्या, तो जो आज इस दुनिया में आए हो क्या वापस नहीं जा सकते? माँ का पेट एक छोटी सी कबरी तो थी कि जिसमें से तुम्हें बाहर उगल दिया गया तो क्या फिर तुम्हें दोबारा नहीं निकाला जाएगा? अरे जब मिम बैन सुलबी व तराई, ये अभी करीब के दौर में साइंस ने ये बात डिस्कवर की है। सुल्ब जो है ना ये रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, और तराइब तरीबतुन की जमे। आगे फरमाया यौम तुब्लस्सराइर, याद करो इस दिन को जब सब राज फाश कर दिए जाएंगे, फिर क्या होगा? फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, फिर ना उसमें कोई जोर होगा और ना कोई दूसरा मदद करने वाला होगा। अल्लाह की ज़ात इंसान को पैदा करने के बाद इस दुनिया में भेजा, और उस दुनिया में जो कुछ किया उसका एक एक लफ्ज़ जो है क़यामत के दिन स्क्रीन पे आएगा, और आजमाइश होगी सराइर की। तुबला का लफ्ज़ वही है बालाम वाव से, और तुबला की ते मुअन्नस की है। सराइर सिर से, छुपी हुई चीज़, यानी दुनिया में एक इंसान जो कुछ भी करता है हो सकता है कि लोगों को पता चले, हो सकता है कि ना लगे। कुछ की चीज़ें पता लग जाती हैं, कुछ की नहीं लगती। हर मुजरिम को इस दुनिया में सज़ा नहीं मिलती, लेकिन क़यामत के दिन इंसान के हर जाहिर और बातिन की चीज़ को खोल के रख दिया जाएगा। जो भी उसकी नीयतें थी, जो उसके अकायद थे, जो उसके ख्यालात थे, नीयत क्या थी, अज़्म क्या था, इरादा क्या था। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इंसान के हर मख्फी राज को खोल देगा। अगर हम इसको सोचें तो शायद ही इंसान का दुनिया में गफलत में एक दिन भी गुजरे कि मेरा हर राज खुलेगा। लोग अपनी डायरियां छुपाते फिरते हैं, अपने ईमेल्स छुपाते फिरते हैं, अपने पासवर्ड छुपाते फिरते हैं, दूसरों को देखकर स्क्रीन बदल लेते हैं, मौजू बदल लेते हैं, छुपा छुपा के इंसानों से काम किए जाते हैं, लेकिन क़यामत के दिन हर चीज़ खोल के सामने आ जाएगी। फिर आगे फरमाते हैं कि हर अच्छे बुरे अकीदे और अमल की अलामत इंसान के चेहरे पर या जीनत होकर या जुल्मत होकर जाहिर हो जाएगी। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबे यसीर। दुनिया में तो एक मिनट में किसी को पता चलता है ना कि हमने अच्छा किया कि बुरा किया, फिर भी छुपा लेते हैं। और कई लोग आदि मुजरिम होते हैं, बड़े बड़े अपने जुर्म छुपा के रख लेते हैं, लेकिन क़यामत के दिन एक इंसान सब के सामने खुली किताब की तरह होगा। सारी झूठी इज्जतें गईं, बड़े नाम बड़ी बातें, मेरी इज्जत का मसला, बस मेरी इज्जत रख लो, मैं अंदर से ऐसा नहीं था, मैं ये नहीं सोचता था, मुझे वो नहीं करना था। अल्लाह ताला इंसान की सारी चीज़ों को खोल के रख देगा। ये तो था पहला मानी तुबली का। जो तुसहर के मानों में जाहिर करने का मानी। एक दूसरा मानी तुबली का बला से है, तुम तहन व तुख तबर। क्या मतलब? उनको परखा जाएगा, खरा और खोटा अलग किया जाएगा। जिन राजों को फाश करने का जिक्र है, इसमें कुछ बातें तो ऐसी थी कि जो एक इंसान को खुद पता थी, दूसरों को नहीं पता थी। कुछ बातें ऐसी थी जिसको एक इंसान खुद भी नहीं जानता था, या जानते बूझते अनजान बना रहता था। क़यामत के दिन हर चीज़ के असरात दिखाए जाएंगे कि देखो तुम्हारी इस बुरी आदत का तुम्हारे बाद क्या असर हुआ, तुम्हारी इस बुराई का कितना बुरा तुम्हारे पीछे सदका जारिया रहा, और तुम्हारी इस खूबी का तुम्हारे बाद कितना अच्छा सदका बना, ये क़यामत के दिन दिखाया जाएगा। नताइज, असरात, कब तक, कहाँ तक हुई, कोई नहीं जानता कि अगर उसने एक बुराई का पौधा लगाया था तो उसके पीछे अब कितने बुरे पौधे उग चुके। काबिल को नहीं पता था कि जो कत्ल उसने किया, उस कत्ल के बाद अब दुनिया में होने वाले कितने कत्ल हैं, लेकिन क़यामत के दिन उसके सामने खोल के रख दिया जाएगा कि तुमने जो एक बुराई की रस्म डाली थी, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने तुम्हारे नामे अमाल में कितनी लंबी लिस्ट रख दी। ये हैं वो चीज़ें जो लोगों की को होश गुम करवा देती थी। जब लोग कुरान को इस तरह सुनते और समझते थे कि वो बात उनके दिल पे उतरती थी, उनको किसी की फ़िक्र नहीं रहती। वो जाहिर से ज़्यादा बातिन की और बातिन से ज़्यादा जाहिर की फ़िक्र करने लग जाते थे कि हमारे साथ उसे बनने क्या वाला है। फ़मा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। सारे राज तुम्हारे लीक हो गए, और रोक लो, कोई है कुव्वत, कोई मशीन इस्तेमाल करो हमारे ख़िलाफ़, कोई बात ख़त्म करो, तुम्हें पता तो चल जाए कि ये है क्या। पीछे अल्लाह ताला ने सुल्ब और तराइब की बात की, और ये वो दो अज़ाएँ कि जिनको इंसान की तख्लीक में भी बड़ा गहरा हिस्सा मिलता है, और इंसान के गुना और सबाब में भी इन दोनों जिस्म के अज़ा का बहुत हिस्सा होता है। अल्लाह सुबहान तआला कैसे इन दो चीज़ों को सामने रख कर हर नाजायज़ ताल्लुक़ के पोल खोल रहे हैं कि सोच लो कि तुमने अपने जिस्म के अज़ा को हलाल जगह पे इस्तेमाल किया या हराम जगह से किया। और अल्लाह ताला ने इंसान को जिस पानी से पैदा किया है, ये उस सूरत में भी पैदा होता रहता है चाहे किसी के हाथ कट जाए, किसी के पाँव कट जाए। हैंडीकैप लोग हैं, बाद जिस्म के सारे उस टूट जाते हैं, लेकिन सेक्स की सलाहियत पूरी मौजूद होती है। अल्लाह ताला ने इसी चीज़ के साथ दिमाग को जोड़ा हुआ है, हमारा दिमाग भी इन्हीं चीज़ों के साथ है। कहा क्या किया तुमने इस दिमाग से, क्या सोची थी अंदर तुम्हारे दिल तुम्हारे दिमाग के क्या कुछ था, तुम कभी सोचते नहीं हो कि तुम थे क्या, कहाँ से बन गए, और आज तुम हो तो कल फिर बन जाओगे। तुम्हें अल्लाह की इस कुदरत में कोई शक महसूस होता है? तुम कैसे सोचते हो कि ये हो नहीं सकता, अल्लाह दोबारा करके लाएगा, और अगर यकीन नहीं आता तो वस्समाई ज़ातिर रज, कसम है आसमान की जिससे बारिश बरसती है। बारिश का बरसना इस बात की दलील है कि कोई ज़ात है जो ज़मीन के नीचे के अंदर छुपी हुई चीज़ों को भी और बाहर की चीज़ों को भी दिखाता है। और पिछली आयत के साथ फिर वस्समाई ज़ातिर रज का ताल्लुक है। कैसे बारिश का कतरा आसमान की बुलंदियों से नीचे गिरता है और फिर आखिर ज़मीन के अंदर चला जाता है। का जिस तरह कल तुम्हारे सरायर खुलेंगे, तुम्हारे वो आमाल जो दुनिया में एक राज बन के रह गए थे, वो मामलात जो भी ज़ाहरी तौर पर लोगों के सामने हैं, लेकिन तुम्हारी नीयत, जो तुम्हारी कोशिशें थी, जो मुहर्रकात थे तुम्हारे कामों के करने के, वो नहीं अभी लोगों के सामने आए, तो याद रखना कि क़यामत के दिन ये राज खुलेगा, और नहीं यकीन आता तो बरसती हुई बारिश को देख लो। हर कतरा जो पानी का ज़मीन में जाता है, फिर वहाँ से दोबारा किसी न किसी शक्ल में बाहर आता है। वलर्दि ज़ाति सद, और ज़मीन की जो बारिश से फट जाती है, वहाँ पहले रज था लौटने के मानों में, बारिश बार बार आती है, आ आ के जाती है। ज़मीन से पानी उठता है समंदरों में से, और आसमान से फिर पलट के आ जाता है, और ज़मीन को ज़ात सद कह के तो होश गुम कर दिया। सद का लफ्ज़ पीछे कई जगह पढ़ा हमने, सुदा सर्द के दर्द को कहते हैं, सदा शिगाफ को कहते हैं। जब काश्तकार ज़मीन में बीज बोता है तो ज़मीन पर इस तरह से कोई टूल इस्तेमाल करता है कि सतह हमवार हो जाती है और बीज उगता है तो उसी हमवार सतह में एक सुराख करके उठता है। अल्लाह तआला कहते हैं ये कुरान तुम्हारे दिलों में सुराख क्यों नहीं करता। बारिश का एक कतरा ज़मीन के अंदर जाए तो ज़मीन फट के रह जाए और उसके अंदर से पौधा उगे। तुम इस कुरान को मामूली चीज़ समझते हो, तुम्हारे दिल क्यों नहीं फटे? ये कुरान क्या बारिश नहीं है? क्या तुम्हारे दिल इतने वीरान हो गए, तुम्हारे दिल इतने बंजर हो गए? तुम इसको क्या समझते हो? वमा हुआ बिल हज़्ल, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये खेल तमाशा नहीं है, ये कोई फ़न वाला इल्म नहीं है, ये कोई दुनिया की चीज़ नहीं है कि जिसको तुम ले के खाते पीते खेलते कूदते दिल में दूसरी बातें रखे हाथों में सेल फोन घुमाते सोच कहीं दिल कहीं इरादा कहीं करते हुए ले लो। वमा हुआ बिल हज़्ल, ये कोई हज़्ल नहीं है। आज लोगों ने कुरान को भी हज़्ल बना दिया, खेल तमाशा बना दिया, दीन के नाम पे तमाशे। खेल तो खेल के नाम पे था, जब दीन के नाम पे भी हंसी मजाक हो, अल्लाह ताला कहते हैं ये दो टोक बात है, ये संजीदा हकीकत है। इस कुरान को पढ़ने वाले संजीदा हो जाते हैं, उनको अपनी मौत याद रहती है, उनको पता चल जाता है कि हम इस दुनिया में खेल के लिए नहीं आए। ये दुनिया बार बार बन बन के बिगड़ रही है, बिगड़ बिगड़ के बनती है, ये दुनिया खेल नहीं, ये अल्लाह की ज़ात है जिसने ये सब कुछ बना दिया। तुम इस कुरान का इनकार करते हो? कोई बात नहीं, इन्नहुम यकीदूना कैदा, ये लोग तरह तरह की तदबीरें कर रहे हैं, किसके खिलाफ? नबी सल्लम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। कभी छुप के, कभी ढक के, कभी दूसरी तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। अल्लाह ताला कहते हैं इनको करने दो। वह अकीद कैदा, मैं भी एक तदबीर फरमा रहा हूँ, ये चालें चलते हैं, मैं इनकी चालों को अपनी तदबीरों के ज़रिए नाकाम कर देता हूँ। फमख हिलिल काफिरी न अम हिल हमरो वईदा, बस आप कुफार को थोड़ी सी मोहलत दे दें, चंद दिन और इनके दुख सह लें, चंद दिन इनकी बातें और सीख लें सुन लें, ये जो कहते हैं कर लें, ये चंद दिन की बात है, फिर मैं खुद इनसे निपट लूँगा, इनके करतूतों का इनको खुद मज़ा चुकाऊँगा। अम हिल हमरो वईदा, अमहिल में मोहलत है, मीम हालाम, और रुवैदा का लफ्ज़ इरवादुन से है। पहला लफ्ज़ उतर गया, अलिफ को हज़ करके पीछे रुवैदा रह गया, ये तस्गीर होती है, बड़े लफ्ज़ को छोटा करना, इसको तस्गीर तरखीम कहते हैं, यानी किसी बड़ी चीज़ को सहूलत की खातिर छोटा करके दिखाना। इशारा इसमें वही है धमकी का। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तआला की तरफ से ये धमकी है। अरब लोग हवा के आहिस्ता चलने के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो बात यह है कि लोग इस कुरान को खेल समझते हैं, समझते रहें, हंसी समझते हैं, समझते रहें, तमाशा समझते हैं, समझते रहे, आज समझ रहे हैं, कल पता लग जाएगा कि ये क्या है। ये कुरान जिसने दुनिया में इनकलाब पैदा किया था, ये वो किताब है जिसने किसी भी कौम को बुलंदियाँ दिलवाईं, इज़्ज़तें दिलवाईं। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, अल्लाह ताला ने उनको मुँह की दी। लोगों ने इसकी कदर ना की, अल्लाह ताला ख़ुद इस किताब को पूरी दुनिया में नाफिज करने पे कादिर हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कुरान पाक के बारे में, आप फरमाते थे लोगों किताबुन फीही खबरु मा क़ब्लकुम, ये वो एक ऐसी किताब है जिसमें तुमसे पहली उम्मतों के हालात और ख़बरें भी हैं और तुम्हारे बाद आने वालों के लिए अहकाम हैं, और लैसा बिल हज़्ल, ये फैसला कुन कौल है, हंसी मजाक नहीं। तो कुरान हंसते खेलते खाते पीते समझ नहीं आता, दिल सख्त हो जाते हैं जब इंसान कुरान सुनते हुए भी इसको अपने दिल पे नहीं लेता। जितना भी लोग इस किताब को लोगों से दूर करने की कोशिश करते हैं या लोगों को इस किताब से दूर करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही लोगों की इस किताब से दिलचस्पियां बढ़ती रहती हैं। एक सहाबी थे खालिद उद्वानी रहमतुल्लाह, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ार सकीफ़, बनु सकीफ़ कबीला जहाँ रहता था उस बाज़ार की तरफ इशारा, बनु सकीफ़ कबीले में बाज़ार में कमान या लाठी के सहारे पर खड़े देखा। آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے تھے، میں نے وہاں آپ سے سورت الطارق سنی، میں نے اسے یاد کر لیا، حالانکہ اس وقت میں ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام سے نوازا اور اسلام کی حالت میں میں نے اس کو پڑھ بھی لیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ ایک سورت کفر سے بھرے ہوئے دل کو ہدایت کی طرف لے آئے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورت بقرہ اور سورت نساء پڑھی، مغرب کی جماعت میں۔ سورت بقرہ اور نساء کتنے سپارے بنتے ہیں؟ تقریباً 3.5 سپاروں کے قریب بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، مغرب کی نماز اور وہ بھی اتنی لمبی جبکہ لوگ ویسے دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تجھے کیا یہی کافی نہ تھا کہ والسماء والطارق اور والشمس جیسی صورتیں پڑھتا؟ یہ نسائی کی روایت ہے۔ تو یہ ہے وہ سورت طارق جس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا، اور آج وہ چیزیں جو ڈسکور ہو رہی ہیں وہ 1400 سال پہلے ایک نبی امی کی زبان سے لوگوں نے سنی اور ان کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تلاوت سنتے ہیں سورت کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.